تفسیر سورت البروج مکی سورت ہے، 22 آیات، 1 رکوع، الفاظ اور کلمات کی تعداد 109، حروف 465 ہیں. پہلی آیت کے لفظ البروج کو اس کا نام قرار دیا گیا. اس سورت کا زمانہ نزول مکہ کا وہ دور ہے جب دعوت جو تھی وہ پوری شد و مد سے پھیل رہی تھی اور اہل مکہ کا ظلم و ستم بھی پوری شدت کے ساتھ بھرپا تھا، اور کفار مکہ مسلمانوں کو سخت سے سخت عذاب دے کر ایمان سے پھیرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس سورت کا موضوع ایک طرف کفار کو ان کے ظلم و ستم سے اور ظلم و ستم کے برے انجام سے خبردار کرنا ہے، اور دوسری طرف ایمان لانے والوں پر جو ظلم ہو رہے تھے، ایمان لانے والے جو ظلم و ستم کی بھٹی میں جھونکے جا رہے تھے، پیٹے جا رہے تھے، ان کو تسلی دینا ہے کہ مشکلات کا دور ہمیشہ نہیں رہتا. مشکلیں مصیبتیں جو ہیں ان کے آگے جھکا نہیں کرتے، گرا نہیں کرتے، ڈھایا نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، پہاڑ بن جاتے ہیں. جان تو دے دیتے ہیں لیکن اللہ کے راستے سے جو ہے وہ ہٹا نہیں کرتے. ایمان کی کسی قیمت پر جو ہے ایمان جو ہے اس کا سودا نہیں کیا کرتے. بڑی خوبصورت سورت ہے. سورت کہف میں بھی آپ نے اس سے ملتا جلتا مضمون جو ہے وہ پڑھا ہے، اور اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا کہ چند نوجوانوں نے کس طرح اپنے ایمان کو بچایا، اور اب یہاں پر بھی جو ہے وہ اسی طرح کا جو ہے وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے. اور اس کے آغاز میں اللہ تعالی نے اصحاب الاخدود کا ایک واقعہ سنایا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں. والسماء ذات البروج، قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ آغاز جو ہے وہ قسم سے ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے تو قسم کس چیز کی؟ آسمان کی. اور آسمان جو ہے ہر ننگی آنکھ کو، ہر دیکھنے والی آنکھ کو، ہر مسلمان اور کافر کو، سب کو نظر آتا ہے. آسمان اللہ کی قدرت، کبریائی، اللہ تعالی کی کے جو کرشمے ہیں، عجائبات ہیں، ان کا عجیب و غریب نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے. ایک دیہاتی کو بھی، ایک شہری کو بھی، ایک پڑھے لکھے کو بھی، ان پڑھ کو بھی، سب کو نظر آتا ہے. تو آسمان کی قسم کھائی. وَالسَّمَاءِ، شین میم واو، بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لغوی معنی کیا ہے؟ بلند ہونا. تو زمین کی نسبت اور کائنات کی ہر چیز کی نسبت آسمان بلند ہے. اور پودوں کو بھی بعض اوقات آسمان یہ سموہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ پودے زمین سے بلند ہوتے ہیں. بارش کے لیے بھی یہ لفظ کبھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ بلندی سے نیچے برستی ہے. آسمان کی جب قسم کھائی تو آسمان میں سے بھی کس چیز کا ذکر کیا؟ ذات البروج، مضبوط قلوں والے کی. برج، با را جیم، اور برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے نمایاں چیز کے لیے. البارجہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ البارجہ کا جو لفظ ہے اس کے بھی معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں نمایاں طور پر ظاہر ہونے والی چیز کو البارجہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ برج عمارت کے اندر، قلعے کے اندر برج ساری عمارت سے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. البارجہ وہ کشتی جس کے بادبان دور سے نظر آتے ہیں. آپ نے پڑھا تھا نا پیچھے تبرج الجاہلیہ، اور اہل ایمان کی عورتوں کو کہا گیا کہ وہ تبرج الجاہلیہ، جاہلیت کی سی سجدہ نہ دکھاتی پھرے، رسم و رواج ان کے نہیں ہونے چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ عورت کا بالوں کو خوبصورت بنانا، ان کو پرومیننٹ کرنا، وہ بھی تبرج الجاہلیہ میں آ جاتا ہے، تبرج ظاہر کرنا. اسی طرح سینے کا میک اپ، یہ سینے کا ابھار، چہرے کا میک اپ، ہاتھوں کی اور جسم کی جو آرائش و زیبائش ہے، سب چیز کے لیے آتا ہے کہ نمایاں ہے، ظاہر ہے، دور سے نظر آتی ہے. اور اسی لیے جو ہے حجاب، हिजाब क्या है कि वो उसको छुपा देता है, तो वो उसका उलट है, और तबरुज क्या है कि उसका जाहिर करना। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई, क्योंकि आसमान जो है उसमें क्या है, बुर्ज है, बुर्जों वाले आसमान की कसम खाई। मुफस्सरीन में से बाज ने इससे मुराद कदीम इल्मे हय्यत के मुताबिक आसमान के 12 बुर्ज लिए हैं। वो कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो आसमान के 12 बुर्ज हैं। वो क्या है आसमान के 12 बुर्ज? वो दरअसल सितारों के झुरमट है, कॉन्स्टिलेशंस उनको कहा जाता है, मजमा नुजूम को कहा जाता है। अब आप देखें कि जब आसमान जो है इस पर सितारे होते हैं तो आसमान नुमाया हो जाता है, तो वो जो आसमान पर मुख्तलिफ सितारे और मुख्तलिफ उनके झुरमट, तो उनको जो है ये जो इल्मे नुजूम जानने वाले या है ये दान जो थे, उन्होंने उसको 12 बुर्जों में तकसीम किया है। और उनको देखते ही जब आसमान पर ये सितारे या झुरमट नजर आते हैं सितारों के, तो जहन के अंदर एक तसव्वुर पैदा होता है, एक शक्ल सी बन जाती है, एक होला सा बन जाता है। तो इसी तरह फिर वो जो है वो इनके नाम रख देते हैं। आप देखिए सूरत अल हिज्र आयत नंबर 10 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने आसमान में बुर्ज बनाए और इस आसमान को देखने वालों के लिए सजा दिया। तो फिर मुराद क्या है कि आसमान पर जो सितारे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आसमान को एक जीनत देते हैं, नुमाया करते हैं। और दूसरे सितारों के क्या फायदे पड़े थे आपने, कि शहाबे साकिब जो है वो शैतानों को मारने का जरिया बनते हैं। एक मानी ये भी पढ़े थे कि मुसाफिर इससे जो है वो रास्ता जो है वो देखते हैं, रास्ता उनको मिलता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुर्जों वाले आसमान की कसम खाई। तो बुर्जों वाला आसमान, ये मजबूत कलों वाला आसमान किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। तो वो रब जो बुर्जों वाला आसमान बना सकता है, वही रब जो है वो कयामत भी ला सकता है। और सूरत अल बुरूज, इसकी अहमियत का अंदाजा इससे कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर और असर में सूरत तारिक और सूरत अल बुरूज पढ़ा करते हैं। और एक हमें रवायत में मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज में वस्समा इजातिल बुरूज ये पढ़ा करते हैं। और एक जगह मिलता है कि आपने इसका हुक्म दिया था कि लोग इसको पढ़ें, कि इशा की नमाज में इसको पढ़ें। तो आप देख लें कि तवज्जो दिलाई जा रही है कि कायनात पर गौर व फिक्र करो और सोचो कि जिस रब की कुदरतों के करश्मे ये और ये हैं, वही रब है जो कि कयामत भी ला सकता है। और आगे फिर बात हो रही है किसकी, कयामत की, क्योंकि आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक बुर्जों वाले आसमान और रोजे कयामत की कसम खाई गई इस बात पर कि कयामत शुदनी है, कयामत आकर रहेगी। और वो लोग जो है जिन्होंने जो है वो गलत काम किए हैं, तो क्या है कि वो अबदी तौर पर जहन्नुम के गढ़ों में फेंके जाएंगे। वो लोग जो के बुरे काम करने वाले हैं, तो कयामत आके रहेगी। और दूसरी तरफ जो नेक लोग हैं, तो उनका अंजाम क्या है कि उन्हें भी जो है वो उनका अंजाम बहुत ही खूबसूरत होगा, बेहतरीन होगा। अब आप देखें कि कहा वल यौमिल मौऊद, और दिन जिसका वादा किया गया, मौऊद। मौऊद का लफ्ज जो है ये वाद से है और ये इस्म मफूल है, मुकर्रर किया हुआ, जिसका वादा किया हुआ है, मुराद है कयामत का दिन। व शाहिदिन व मशहूद, शाहिद आप पढ़ चुकी हैं कि शाहिद जो है शहादा से है और इसके जो है वो दो मानी होते हैं। एक तो ये कि कोई शख्स जो है वो कहीं मौजूद हो तो उसको कहते हैं कि शाहिद। अब आप देखें कि जब कोई शख्स जो है कहीं कोई वाकया हो जाता है, कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा, कोई कत्ल, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी बात, तो कुछ लोग शाहिद होते हैं, देख रहे होते हैं, मौजूद होते हैं ना, तो जो मौजूद होते हैं वो देख रहे होते हैं। तो एक तो इसके ये मानी है, मौजूद होना, देखना, शाहिद। दूसरे इसके ये मानी होते हैं कि जो मौजूद होते हैं वही फिर विटनेस का जरिया बनते हैं, वो गवाह बनते हैं। अब शहीद जो है उन्होंने क्या किया, शहीद जो थे जब दुनिया में मौजूद थे तो उन्होंने जो है वो क्या किया कि उन्होंने उन्होंने जो है वो जब अल्लाह के दलाइल देखे कायनात में जो बिखरे पड़े हैं और अल्लाह की आयात जब उन तक पहुंची तो वो उसके गवाह बन गए। पहले तो वो गाजी थे, जिहाद करने वाले थे, मुजाहिद थे, फिर उसके बाद जो थे फिर उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए और फिर उसकी गवाही दी, शहीद हो गए। तो पहले क्या था कि वो जो थे वो ईमान लाए और गवाह बन गए कि हाँ ये जो बात है, जो ये पैगाम है, हम इसकी शहादत देते हैं। यही तो है शोहदा अल-नास, उम्मत मुस्लिमा को भी तो शोहदा बनाया गया है ना कि सारी इंसानियत पर वो विटनेस दें। और फिर शहीद जो थे पहले गवाह बने, उन्होंने उसको कबूल किया दीन को, फिर उन्होंने क्या किया हत्ता के जानों के नजराने पेश कर दिए, तो उसको कुर्बान कर दिया। तो इस तरह जो है शाहिद जो है फिर इसके दोनों मानी मुराद लिए जाते हैं, एक मौजूदगी उसको देखना और दूसरा फिर उसकी गवाही देना। अच्छा फिर इस सिलसिले में जो है वो ये कौन है जो शाहिद है, एक तो राह बात यह है कि जैसे कयामत आने वाली है तो जब कयामत आएगी फिर होगा क्या कि हर देखने वाला जो है वो कयामत के रोज जो है वो हाजिर होगा, शाहिद होगा। दुनिया में भी लोग देखते हैं ना सब चीजों को, तो कयामत के दिन भी हर देखने वाली आंख, हर शाहिद, हर आंख देखेगी, खा वो मुसलमान है खा वो काफिर है। और वो क्या देखेगी, वो कयामत के हौलनाक अहवाल को देखेगी। इसके ये माने भी बयान किए गए हैं, इसे हर शख्स मुराद है। फिर बाज लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो खुद अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला की जात क्या करती है, दुनिया में भी वो शाहिद है, देख रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं। कुरान में भी आता है ना वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, वो हर चीज पर गवाह है, कैसे लोगों के रवैये हैं, क्या किरदार है। और फिर के क्या कयामत के दिन भी अल्लाह ही शहीद है ना, अल्लाह हर चीज को जो है वो देखता है, अल्लाह खूब जानता है। और आप देख लीजिए सूरत अल-बुरूज की आयत 9 में भी है वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद। फिर इसके एक मानी जो है शाहिद से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लिया गया, इसकी दलील दीजिए। मसलन सूरत निसा की वो आयत है जो आप पट्टी जानती हैं, फकैफा इज़ा जैना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद वजैना बिका अला हाउलाई शहीदा। फिर क्या बनेगी जब हम हर उम्मत पर एक गवाह लाएंगे, तो उम्मत का पर जो गवाह है वो कौन है, पैगंबर। हर उम्मत पर एक गवाह पेश किया जाएगा और वो पैगंबर होंगे जो गवाही देंगे कि हमने दीन का पैगाम पहुंचाया था और बदी से मना किया था। वजे नबी का अला उलाई शहीदा। और फिर क्या होगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उम्मत मुस्लिमा पर जो है वो गवाह बनाकर लाया जाएगा, उनको गवाही देनी पड़ेगी। और फिर पैगंबरी का सिलसिला खत्म हो गया, तो जिस कटहरे में खड़े होकर पैगंबरों ने गवाही दी थी इस बात की विटनेस कि हमने दीन का पैगाम पहुंचा दिया था, वहां पे उम्मत मुस्लिमा खड़ी होगी और गवाही देगी। और ये वो आयात हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाइश की कि मुझे कुरान सुनाओ, और वो सुनाने लगे। तकरीबन शायद वो 100 आयतें सुनाई होंगी सूरत निसा की, और जब इस आयत तक पहुंचे ये वाली जो भी मैंने पढ़ी है फकैफा इज़ा जैना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कितार रो रहे थे, कहने लगे बस करो अब्दुल्ला बिन मसूद, बस करो अब्दुल्ला बिन मसूद, बस करो। और आपने देखा कि आपका जो आंखें थी आंसू बहा रही थी, आपकी दाढ़ी मुबारक भीग चुकी थी, आपका दिल जो है वो आंखों के रास्ते पिघल कर बह रहा था और आपकी रीश मुबारक को तर कर रहा था। इस जिम्मेदारी का एहसास कि मैंने वो जो गवाही देनी थी दी, और अब मेरा अंजाम क्या होगा, अब जो है वो अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा। और उन्होंने तो सारी जवानी सारा बुढ़ापा दिन रात खलवतें जलवतें, और खलवत से वो निकले गारे हिरा से तो वो कोहे सफा पर जलवत में आकर खड़े हो गए। उन्होंने चादर ओढ़ी थी, कुरान में आयतें नाजिल हो गईं, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम फानज़िर, या अय्युहल मुज़म्मिल, और कहीं या अय्युहल मुदस्सिर कुम फानज़िर व रब्बका फकब्बिर, और कहीं कि क्या कर, कुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इन्कुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। तो आपको खड़ा कर दिया गया। तो वहां पे क्या है कि पैगंबर जो है वो गवाही देगा, उम्मते मुस्लिमा भी गवाही देगी। इसकी दलील आप लाइए। उम्मते वस्त बनाया गया है ना, शोहदा लन्नास इसकी गवाही है। अच्छा, और जो है आप इसके लिए दलील ला सकती हैं कि जो है वो जमीन जो है ना वो भी शहीद है, शाहिद है, जमीन गवाही देगी। कैसे कि जमीन जब कयामत आएगी तो इसके अंदर एक भूंचाल आ जाएगा और फिर जमीन क्या करेगी कि अभी आपने सूरत इंशिकाक में भी पढ़ा आसमान और जमीन के बारे में, वअल्कत मा फीहा वतखल्लत है ना, और आसमान के बारे में वाज़िनत लिरब्बिहा वहुक्कत वअखरजतिल अर्द वस्क़ालहा, वो सब कुछ निकाल के बाहर कर देगी। ये भी एक दलील है कि ये भी गवाह बनेंगे और हमारे जिस्म के अज़ा इंसान के खिलाफ गवाही देंगे। और गवाहियां जो है वो कायनात से एक इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ गवाही देगा, अल्लाह कुछ भी गवाहियां जो है वो कायम कर सकता है। तो बहरहाल ये सारे इसके शाहिद के मानी किए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मशहूद क्या है। वह मशहूद, मशहूद जो है जिस पर गवाही दी जाए, मशहूद के मानी है जिस पर गवाही दी जाए, और जो है वो ये जो गवाही देने वाले हैं और जिस जिसकी पर गवाही दी जाएगी, तो क्या चीज है जिस पर गवाही दी जाएगी, इसमें इसमें जो है यानी क्या चीज है जिसे लोग देखेंगे। तो मशहूद के मानिए जिस पर गवाही दी जाए भी और जिस पर हाजिर हुआ जाए, वही वाली बात ना, हाजिर होना, मौजूद होता है तो कोई गवाही देता है ना, तो जिस पर मौजूद हुआ जाए या जिस पर जो है वो गवाही दी जाए। तो मशहूद जो है कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो 9 ज़ुलहज का दिन भी है, क्योंकि लोग हज के लिए जमा होते हैं और हाजिर होते हैं। इसी तरह मशहूद कहते हैं जो है मशहूद का लफ्ज जो है वो जुमे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर जुमे के दिन कसरत से दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि ये दिन यौमे मशहूद है। तो इस दिन होता क्या है कि हाजिर होते हैं कौन, फरिश्तों की बकसरत हाजिरी होती है। तो इन मवाकों के लुगवी मानी फिर क्या है कि जुमे के दिन जब कसरत से फरिश्ते हाजिर होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, गवाही देते हैं, दुरूद पेश किया जाता है। इसी तरह जो है फिर एक मानी जो है ये भी बयान किए जाते हैं, जैसे कयामत का दिन, कयामत के दिन क्या है कि सब लोग जो हैं वो जमा होंगे, तो ये भी मुराद है कि जो है वो इससे मुराद कयामत का दिन है। क्यों, इसलिए कि जो है वो जिस तरह जुमे के दिन बहुत से लोग जमा होते हैं, इसी तरह कयामत के दिन भी बहुत से लोग जो हैं वो जमा होते हैं, या अरफे के दिन बहुत से लोग जमा होते हैं। तो बहरहाल अब जहां भी लोगों का मजमा कसीर होता है तो वहां जो है वो एक दूसरे पर गवाहियां दी जाती हैं। और याद रखिएगा कि शाहिद और मशहूद ये दोनों जो लफ्ज हैं, इस सिलसिले में उलमा की जो है वो बहुत सी राय है, बहुत इसमें इख्तलाफ है, और इस तरह उन्होंने ये मुख्तलिफ मानी जो है वो बयान किए हैं। और इन तमाम बातों का जो निचोड़ हमारे सामने आता है वो यही है कि ये भी हो सकता है कि कयामत का दिन है, या फिर अरफे का दिन है, या फिर जुमे का दिन है, तो जहां बहुत से लोग जो हैं वो जमा होती हैं। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि असल में आयत नंबर 2 में वल यौमिल मऊद, कयामत के दिन की जो कसम खाई गई, तो दरअसल फिर इससे मुराद जो है वो जब कयामत के दिन सब लोग इकट्ठे होंगे, और उस वक्त जो है जहां पे अंबिया भी जो है वो गवाह बनेंगे और जमीन भी और इंसान का अपना वजूद भी गवाह बनेगा, तो ये सारा कुछ जो है वो क्यों होगा। वशाहिदिन व मशहूद, और देखने वाले की और देखी जाने वाली चीज की। तो अगर इसे मुराद जो है वो देखने वाले की और देखी जाने वाली चीज की जो है वो लिया जाए इसके मानी, तो देखने वाला है हर शख्स और जो देखा जाएगा जब कयामत हाजिर होगी तो कयामत खुद सबको नजर आएगी उसके हौलनाक मनाजिर जिसको वल यौमिल मऊत कहा गया कि जिसका वादा किया गया है। वशाहिदिन हर इंसान देखेगा क्या व मशहूद जो जो है वो उसके हौलनाक मनाजिर नजर आएंगे तो लोग उसको देखेंगे। अब आयत नंबर जो है वो 4 में आप देखें कि यहां से जो है एक वाकया शुरू होता है और वो वाकया क्या है, कुतिला असहाबुल उखदूद। कुतिला का लफ्ज जो है ये जो है वो जैसे आप यूं समझ लें कि ये दुआया है, दुआ जो है अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, और यहाँ पे बददुआ दी गई है, कुतिला मारे गए। और ये लफ्ज जो है जैसे किसी पर जो है वो लुइना के मानी में इस्तेमाल किया जाता है, कुतिला लुइना लानत की गई उनको जो है वो हिलाक कर दिया गया। तो किनको, कुतिला असहाबुल उखदूद मारे गए, असहाबुल उखदूद गड़े वाले। उखदूद का लफ्ज जो है ये खा दाल दाल से निकला है और ये इसके मानी होते हैं गड़े और खंदकें। ये लफ्ज गड़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और खंदक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा इस हिस्से में आप ये बात याद रखें कि जैसे जो है उखदूद हमें कैसे नजर आ रहा है, वैसे तो जमा नजर आ रहा है ना, लेकिन साहिब मुंजद ये एक डिक्शनरी है अरबी की, वो ये कहते हैं कि ये वाहिद है। वो क्या कहते हैं कि उखदूद वाहिद है और इसकी जमा है अखादीद। अच्छा दूसरे लोग ये कहते हैं कि नहीं ये जमा है, वो कहते हैं खदुन वाहिद है और इसकी जमा है उखदूद। तो दोनों तरह ही आप इसको याद रखें कि खदुन वाहिद है तो उखदूद जमा है, अगर उखदूद वाहिद है तो फिर अखादीद, और कभी यूं भी होता है कि जमा की भी फिर जमा होती है। तो बहरहाल गोया के यहां पर जो है इसके बहुत से जो है वो कसरत मुराद है। अच्छा ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है गड़े के लिए, गड़ा, तो गड़ा भी कैसा, गड़े के लिए कुरान में हुफरा भी आया है, जुर्फ भी आया है, गायत, लेकिन यहाँ पे उखदूद है, ये गड़े के लिए तीसरा इसका दर्जा है। और जमीन में मुस्ततील और गहरा खोदा हुआ गड़ा, जैसे पानी की एक लहर नहीं, पानी की एक नहर नहीं होती, लंबी सी होती है, गड़े की तरह होती है, तो उस तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि लंबा गहरा मुस्ततील शक्ल का गड़ा जो कि खोदा जाता है, जैसे खंदक भी है, खाई भी है, तो उखदूद। अच्छा ये जो हमारे गाल के ऊपर एक गड़ा सा बनता है खदुन, उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और आप में से माशाल्लाह आपकी गालों में बहुत पड़ता है ना, बाद लोगों की इधर भी जो है वो हंसते हैं तो साथ ही जो है गड़ापन बन जाता है। तो अब यहाँ पे असहाबुल उखदूद जो है कहा जा रहा है कि वो लोग जो है वो मारे गए, हिलाक किए गए, असहाबुल उखदूद। ये कौन लोग थे जो के जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो लोग मारे गए। इस सिलसिले में मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इससे मुराद जो है आगों की खंदकें, ऐसी खंदकें जिन्हें खोदा गया और उसके बाद जो है जो ईमान लाने वाले थे उनको जो है हिलाक करने के लिए जो है वो आग से भरी हुई खंदकों में जो था वो डाल दिया गया, रब के मानने वालों को हिलाक कर दिया गया। तो असहाबुल उखदूद से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने अहले ईमान के लिए खंदकें खोदी और उसके बाद जो है उनको खंदकों में डाल दिया, उनको हिलाक कर दिया। तो असहाबुल उखदूद वो लोग हैं जिन्होंने खंदकें खोदी थी और अहले ईमान को डाला था और फिर उसके बाद क्या करने लगे, अन्नारिजातिल वकूद, और वो जो खंदक थी उसमें क्या था, अन्नार, आग से वो भरी हुई थी। वकूद, ईंधन वाली, वो ईंधन वाली आग थी। अब आप देख लें कि ईंधन का लफ्ज भी आपने पढ़ा है और इससे मुराद जो है, ईंधन से मुराद कौन सी आग होती है? एक तो है ना जो है जैसे वकूद, तो जब ईंधन जलता है तो होता क्या है कि बाज ईंधन ऐसे होते हैं कि जब उनको जलाया जाता है तो ऐसी बेकार सी जो लकड़ी होती है जिसका कोई खास फायदा नहीं होता, और बाज ऐसे होते हैं कि जैसे चुन चुन कर जो है वो कोई चीज ईंधन में डाली जाए। तो पहला दर्जा है हताबा, जिससे मुराद जो है नकारा, सिर्फ जलाने के काबिल लकड़ियां। फिर दूसरा लफ्ज है हसाबा, छोटी छोटी पत्थरियां, किंकर वगैरह, के जिनकी वजह से जो है वो पत्थरों की आग जो है जलाई जाती है। और वकूत कहते हैं आग रोशन करना, हर वो ईंधन जो शोला पैदा करके जले, लकड़ियां भी हो सकती हैं, पत्थर भी और खुद इंसान भी। और बाज दफा जब आग की तेजी इंतहा को पहुंच जाती है तो उसमें जो है मजीद उसमें उसको आग को भड़काने के लिए कुछ उसके अंदर डाल दिया जाता है। बाजों का कहते हैं कि पानी जब डाला जाए ना तो वो भी वकूद बन जाता है क्योंकि आग उसे और भड़कने लगती है। तो जलते हुए ईंधन को खा किसी किस्म का भी हो तो उसके लिए वकूद का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। आग जातिल वकूद, खूब भड़कती हुई ईंधन की आग थी, और जब उन्होंने खंदकें खोदी उसमें आग जो थी वो खूब भड़कने लगी। और वो करने क्या लगे, इज हुम अलैहा कुऊद, और वो खुद जो थे उस गड़े के किनारे पर बैठे हुए थे। इज हुम, और वो थे अलैहा, उसके ऊपर, इनके ऊपर, उखदूद के ऊपर वो बैठ गए, इसलिए उनको असाबुल उखदूद कह दिया गया। बैठकर कर क्या रहे थे, कुऊद, कुऊद कादे से है ना, कि जैसे बाजुकात मैच देखने के लिए बहुत से लोग होते हैं, बाजुकात जो है वो किसी को फांसी दी जा रही है तो बहुत से तमाशबीन को जमा किया जाता है। जैसे जो है वो हजरत खुबैब को जब फांसी दी गई थी तो अहले मक्का ने मनादी की थी मक्का में कि लोगों को जमा किया था कि लोग आए और आकर देखेंगे ताकि और लोग भी सोच लें कि जो ईमान लाएंगे तो फिर उनका अंजाम क्या होगा। तो क्या करते हैं, कऊद, जैसे कादे की हालत में बैठना, नमाज में यूं बैठ जाते हैं ना जैसे जम कर बैठ गए, तो बैठे हुए क्या कर रहे थे, वहुम अला मा यफअलून बिल मुमिनीन शुहूद, और वो थे मा यफअलूना, वो जो कुछ कर रहे थे बिल मुमिनीना, ईमान लाने वालों के साथ, शुहूद, और उसे देख रहे थे। तो ये वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े गढ़ों में आग भड़काकर ईमान लाने वालों को उनमें फेंका और अपनी आंखों से उनके जलने का तमाशा देख रहे थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं मारेंगे इन पर, अल्लाह की लानत हो। और बाज पर तो दुनिया में भी अजाब आ गया, और इससे मुराद एक दौर के अहले ईमान नहीं है, मुख्तलिफ अदवार के अहले ईमान, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ऐसे वाकयात दुनिया के मुख्तलिफ खत्तों में, खित्तों में पेश आए, और उसमें ईसाई भी मुराद हैं, और उसमें जो है वो अहले ईमान जैसे जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का भी हमें वाकया मिलता है। मैं आपके सामने वो वाकयात रखती हूँ। और होलोकॉस्ट याद है आपको, किनको जलाया गया था, यहूदियों को जलाया गया था, यहूदियों को जलाया गया था, और बहुत बुरी तरह जलाया गया था। अभी भी आप होलोकॉस्ट डालें इस पे वेब, इस पे गूगल पे, तो आप देखेंगे, आप जरूर आप देखेंगे क्या क्या हाल था, कैसे उनको बंद करके जो है बड़े बड़ी जगहों पर, बड़ी बड़ी जेलों में, फिर उनको जो है इलाकों में उनको जला दिया गया था। तो ये बड़ी जो थी इनकी, इनके लिए उस वक्त इंसानियत की ये तस्लील थी। तो यहां पर अल्लाह ताला जो है एक तरफ तो ये बात बता रहे हैं कि कसम खा रहे हैं बुर्जों वाले आसमान की, दूसरी तरफ रोजे कयामत की कसम खाई है, नंबर दो, तीसरी तरफ कयामत के हौलनाक मनाजिर की कसम खाई है कि सारी मखलूक कयामत के हौलनाक मनाजिर को देखेगी। और इसके साथ जो है क्या बात बताई जा रही है कि जालिमों ने बेबस अहले ईमान के जलने का तमाशा देखा था, उनको आग के भरे हुए जो है वो गढ़ों में, खंदकों में डाल दिया था, तो जिस तरह इन्होंने अहले ईमान का तमाशा देखा था, जब कयामत होगी तो सारी मखलूक जो है इन जालिमों का तमाशा देखेगी। व शाहिदी हूँ व मशहूद, गवाहियां होंगी सब, फिर इनका तमाशा देखेंगे, फिर सब जो है वो देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था और अब इनका जो है वो अंजाम क्या हुआ। फिर आप देखिए कि अब यहां पे हम देख लेते हैं कि वो जो मुतद्दत वाकयात पेश किए जाते हैं वो क्या वाकयात हैं। इस सिलसिले में जो है वो सुहेब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बादशाह का एक काहिन था जो उसे गैब की खबरें दिया करता था। काहिन ने बादशाह से कहा कि एक जहीन और फतीन लड़का तजवीज करो जिसे मैं ये इल्म सिखा दूं, मुझे खतरा है कि मर जाऊं तो ये इल्म ही उठ ना जाए और तुम में इसका कोई उस्ताद ना रहे। चुनाचे लोगों ने ऐसा लड़का तजवीज किया और उसे हुक्म दिया कि वो हर रोज इसके पास हाजिर हुआ करे। चुनाचा वो लड़का इस काहिन के हाँ आने जाने लगा। इस लड़के के रास्ते में एक गिरजे में एक राहिब रहता था। फिर जो है मुअम्मिर रावी कहता है कि मेरे ख्याल में इन दिनों ऐसे इबादत खानों के लोग ही मुसलमान थे। वो लड़का जब इस राहिब के पास से गुजरता तो इसे दीन की बातें पूछता, यहाँ तक के राहिब ने उसे बताया कि मैं तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ। अब लड़का राहिब के पास ज्यादा देर रहने लगा और काहिन के यहाँ देर से पहुंचता। काहिन ने इसके घर वालों को कहला भेजा कि लड़का मेरे पास कम ही आता है। लड़के ने राहिब को ये बात बताई तो राहिब ने उसे कहा, जब काहिन तुमसे पूछे कि कहाँ रहे तो कह देना कि मैं अपने घर वालों के पास था, और अगर घर वाले पूछे तो कह देना कि मैं काहिन के पास था। कुछ वक्त इसी तरह गुजरा। फिर एक दफा यूं हुआ कि किसी जानवर ने बहुत से लोगों की राह रोक दी। बास कहते हैं कि वो जानवर शेर था। अब रास्ता रुक गया है, लड़का भी है, उसने जाना है, अब रास्ते में वो शेर है। तो जो है वो लड़के ने एक पत्थर उठाया और कहने लगा, या अल्लाह जो कुछ ये राहिब कहता है अगर ये सच है तो मैं तुझसे सवाल करता हूं कि तू इस पत्थर से इस जानवर को हिलाक कर दे। फिर इसने पत्थर जो फेंका तो जानवर मर गया। अब लोग सारे डरे हुए खड़े हैं, कोई गुजर नहीं सकता, इसको भी गुजरना था, देर भी हो रही थी क्योंकि जल्दी जल्दी। तो अब क्या कि गोया के अगर वाकई तू सच्चा रब है और वो उसकी बात सच्ची है तो इसको जो है ना मार दे। पत्थर फेंका और उठाते हुए ये बात कही और वो जानवर जो था मर गया। लोग पूछने लगे इस जानवर को किसने मारा, किसी ने कहा इस लड़के ने। अब लोग घबराए और कहने लगे कि इस लड़के ने तो ऐसा इल्म सीखा है जो कोई भी नहीं जानता। ये बात एक अंधे ने सुनी तो लड़के से कहा, अगर तू मेरी आंखें लुटा दे तो मैं तुम्हें बहुत मालो दौलत दूंगा। लड़के ने कहा, मुझे मालो दौलत की कोई जरूरत नहीं, अलबत्ता अगर तेरी बिनाई लौट आए तो क्या तू उस जात पर ईमान लाएगा जिसने बिनाई को लुटाया। धंधा कहने लगा हाँ। चुनाचे लड़के ने अल्लाह से दुआ की, इसकी बिनाई लौट आई, फिर अंधा भी ईमान ले आया। जब बादशाह को यह खबर पहुंची तो इसने सबको बुलाया और कहा कि मैं तुमको अलग अलग तरीके से मार डालूंगा। चुनाचे राहिब को तो आरे से चिरवा डाला और अंधे को किसी और तरह मरवा डाला। अब इस लड़के के लिए हुक्म दिया कि इसे फलां पहाड़ पर ले जाओ और चोटी पर जाकर उसे नीचे गिरा दो। चुनाचे जब वो इस चोटी पर पहुंचे जहां से लड़के को गिराना चाहते थे तो वो खुद गिरने लगे और लड़के के सिवा चोटी पर कोई ना रहा। वो लड़का बादशाह के पास आ गया। अब फिर उसने पूछा कि तू कहां कैसे आया और बाकी कहां गए। उसने बताया कि सब ऐसा हो गया। तो अब जब वो बादशाह के पास आ गया तो उसने जो है हुक्म दिया कि अब इसे दरिया में ले जाकर कश्ती से गिरा कर डबो दो। अब भी अल्लाह ने इन लोगों को गर्क कर दिया और लड़के को बचा लिया। अब लड़का बादशाह के पास फिर आ गया, कहने लगा, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो इसकी सिर्फ यही सूरत है, एक ही, कि मुझे सूली पर लटकाकर जब तीर मारो तो तीर मारते वक्त यूं कहो, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का परवरदिगार है। अब आप देखें कि मैं ये सोच रही थी कि लड़के ने ऐसा क्यों किया, क्यों बता दिया। तो असल में वो ये चाहता था कि अल्लाह का जो दीन है नाम उसका बुलंद किया जाए, और बादशाह तो बताना चाहता था कि मैंने उसको मार दिया क्योंकि लोग जो थे ना ईमान कबूल करते जा रहे थे। اللہ پر ایمان لا رہے تھے اور اس کو اپنی خدائی جو تھی وہ خطرے میں نظر آ رہی تھی. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو ثابت کرنے کے لیے وہ جادوگر ہیں, اور فرعون نے ساری دنیا کو جمع کیا, اور جب وہ ہوا جو میلے کا دن تھا اور جس دن وہ سب کچھ ہوا تو خود کہتے ہیں کہ فرعون کی بیوی آسیہ ایمان لے آئی کہ جادوگر جھوٹے ہیں, اور بھی کچھ لوگ ایمان لائے. بہرحال اب کیا ہوا, یہ بیچ میں میں نے اپنی بات کی ہے, میں آگے حدیث کو جاری کرتی ہوں, آگے حدیث جو ہے اس کا آغاز کرتی ہوں. اب لڑکا بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا, اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو اس کی صورت صرف یہی صورت ہے کہ مجھے سولی پر لٹکا کر تیر مارو, اور تیر مارتے وقت یوں کہو کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا پروردگار ہے. چنانچہ اس نے ایسا ہی حکم دیا, پھر لڑکا سولی پر چڑھایا گیا. پھر اس نے یہ کہہ کر تیر مارا, اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا پروردگار ہے. چنانچہ جب لڑکے کو تیر لگا تو اس نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا اور مر گیا. اب لوگ کہنے لگے, یہ لڑکا تو وہ علم جانتا تھا جو کسی کو بھی معلوم نہیں, ہم اس لڑکے کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں. اس نے بہت سے لوگوں کو جمع بھی کیا ہوا تھا. لوگوں نے بادشاہ سے کہا, تم تو تین آدمیوں کی مخالفت سے گھبرا گئے تھے, اب یہ سارے تمہارے مخالف ہو گئے ہیں. پھر بادشاہ نے بڑی بڑی خندقیں کھودی اور اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دی. پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا, جو شخص اپنے نئے دین سے باز آتا ہے, یہ جو اللہ پر ایمان, اسے تو ہم چھوڑ دیں گے, اور جو نہ پھرے اسے ہم آگ میں ڈال دیں گے. پھر وہ مومنوں کو ان خندقوں میں ڈالنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاک ہوئے خندقوں والے, قتل اصحاب الاخدود, وہ آگ تھی بہت ایندھن والی, یہاں تک کہ آپ نے عزیز الحمید تک پڑھا. اور عزیز الحمید جو ہے یہ آیت نمبر 8 ہے سورۃ البروج کی, اس کے آخر تک پڑھا. پھر فرمایا, اور وہ جو لڑکا جو تھا وہ دفن کیا گیا, اور وہ لڑکا جو تھا اس کو پھر دفن کیا گیا. راوی کہتا ہے کہ اس لڑکے کی جو ہے وہ لاش جو ہے میت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نکالی گئی, کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسی بات تھی کہ قبریں جو تھی وہ کھولی جا رہی تھی. تو اور وہ انگلی اپنی کنپٹی پر رکھے ہوئے تھا, جیسے اس نے جو ہے وہ شہادت کے وقت جب یعنی اس کو مارا گیا تھا اس وقت رکھی تھی. یہ ترمذی کی روایت ہے, اور کہتے ہیں کہ ذرا سا جب ہٹایا گیا تو اس میں سے خون بہنے لگا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہی اس پر کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ رکھ دیجئے. تو یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے یہ ترمذی کی روایت ہے, اور یہ بات بھی جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ لڑکا جو تھا وہ راہب سے جو کچھ سیکھ رہا تھا, تو ایک وقت اس نے جا کر راہب کو بتایا کہ مطلب میں نے ایسے ایسے کر رہا ہوں, تو راہب نے کہا کہ اب تیرا مقام تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے بھی اونچا ہو گیا ہے, تو مجھ سے بھی زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ گیا ہے. اس کا جو یقین تھا, جو اس کی کیفیت تھی, اور بعض کہتے ہیں کہ وہ شیر نہیں بلکہ سانپ تھا, یعنی شیر تھا یا سانپ تھا یا کوئی بھی ایسا جو ہے وہ جانور ہے. اچھا پھر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ نہیں تھا کہ گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان لانے والوں کو پھینکا گیا, متعدد واقعات ہیں. ایک میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ ترمذی میں یہ تفصیلی اس طرح سے واقعہ ہے, لیکن اسی واقعے کو جو ہے احمد, مسلم, نسائی اور یعنی ان حوالوں نے بھی جو ہے وہ نقل کیا ہے, لیکن کسی نے تھوڑا سا مختصر, کسی نے تھوڑا تفصیل کے ساتھ. اچھا ایک دوسرا واقعہ بھی ملتا ہے, اور یہ واقعہ جو ہے یہ بیان کیا جاتا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کا ارتکاب کیا. دونوں کے درمیان جب ناجائز تعلقات قائم ہو گئے اور بات کھل گئی تو بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ اللہ نے بہن سے نکاح حلال کر دیا ہے. لوگوں نے اسے قبول نہ کیا تو اس نے طرح طرح کے عذاب دے کر عوام کو یہ بات ماننے پر مجبور کیا, یہاں تک کہ وہ آگ سے بھرے ہوئے گڑوں میں ہر اس شخص کو پھکواتا چلا گیا جس نے اسے ماننے سے انکار کیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اسی وقت سے مجوسیوں میں محرمات سے نکاح کا طریقہ رائج ہو گیا. یہ جو ہے یہ ابن جریر نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. پھر اسی طرح جو ہے ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں آتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ روایت کیا جاتا ہے کہ بابل والوں نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے دین سے پھر جانے پر مجبور کیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گڑوں میں ان لوگوں کو پھینک دیا جو اس سے انکار کرتے تھے. پھر اسی طرح جو ہے سب سے مشہور واقعہ نجران کا بھی ایک جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن کا بادشاہ طوبان اسد ابو قریب ایک مرتبہ یثرب گیا، جہاں یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دین یہود قبول کر لیا اور بنو قریظہ کے دو یہودی عالموں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا. وہاں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت شروع کی. اس کا بیٹا ذو نواس اس کا جانشین ہوا، اور اس نے نجران پر جو جنوبی عرب میں عیسائیوں کا گڑھ تھا حملہ کیا کہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے اور اس کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کرے. اور ابن حشام کہتا ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے اصل دین پر قائم تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نجران پہنچ کر اس نے لوگوں کو دین یہود قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کیا. اس پر اس نے بکثرت لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑوں میں پھینک کر جلوا دیا اور بہت سو کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ مجموعی طور پر 20,000 آدمی مارے گئے. اور جو ہے یہ بات، اچھا یہ جو میں نے ابھی آپ کو لڑکے کا واقعہ جو ہے وہ سنایا ہے، اور یہ جو سب سے پہلے میں نے آپ کو سنایا، اس سلسلے میں ایک بات میں آپ کو خاص طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ جب اس وقت کے بادشاہ نے جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو آگ میں جو بھرے ہوئے گڑے تھے اور خندقے تھے اس میں وہ پھکوا رہا تھا، کہتے ہیں اسی میں ایک عورت بھی تھی، عورت لائی گئی جس کے پاس اس کا دودھ پیتا بچہ تھا. بظاہر وہ اپنے بچے کی وجہ سے آگ میں گھرنے سے گھبرائی کہ آگ ہے، بادشاہ کی بات وہ مان نہیں رہی تھی، تو آگ کو دیکھا اور پھر اپنے بچے کی طرف دیکھا، مگر بچے نے اللہ کے حکم سے آواز دی اور بولا اماں اصبری فانک علی الحق، اے میری ماں تو صبر کر کیونکہ تو حق پر ہے. اور جو ہے اس وقت جو تھے یہ بدبخت بادشاہ بھی اور اس کے وزیر اس کے ساتھی خندقوں کے پاس بیٹھے ہوئے جیسے تماشبین بیٹھے ہوتے ہیں یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت جو تھی وہ عورت پھر اس بچے کے ساتھ جو ہے پھر اس کے اندر جو تھی وہ کود گئی کہ بچہ بول پڑا کہ یہ حق ہے اور اے ماں تو بھی جو ہے یہ عمل جو ہے وہ کر لے. تو یہ تو میں نے آپ کو مختلف واقعات سنائے، اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مختلف واقعات، اور آج کے دور میں بھی مختلف ادوار میں مختلف علاقوں میں مختلف واقعات. اس وقت میں جو آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں، یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا بڑا زبردست واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی، شام کا مارکہ ہے، 80-81 مجاہدین رومیوں کے قیدی بن چکے ہیں. رومیوں نے تانبے کی ایک بہت بڑی آگ بنا رکھی ہے، یعنی آگ کا بہت بڑا انہوں نے ایک جیسے ایک برتن میں جو ہے وہ آگ جو تھی نیچے آگ جل رہی تھی تو اوپر تانبے کا برتن تھا، اور جو برتن تھا نا وہ گائے تھی، تانبے کی ایک بہت بڑی گائے بنا رکھی تھی. اس کے پیٹ میں زیتون کا روغن ڈالا ہوا تھا، نیچے آگ جلاتے رہتے تھے. آخر مسلمان اگر مسلمان قیدی عیسائیت قبول کر لیتے تو ان کو چھوڑ دیتے، اور اگر وہ اپنا دین ترک کرنے سے انکار کرتے تو انہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیتے. ان قیدیوں میں سے ایک قوی الجثہ صاحب رسول بھی تھے، صحابی بھی تھے، یعنی مختلف ایمان لانے والے تھے، ان میں ایک صحابی بھی تھے. چہرے پر عجیب قسم کا جلال، سپاہی انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے کہ عیسائیت قبول کرنے کر لو ورنہ جو ہے تمہیں بھی اس جو ہے وہ بھڑکتی بھی آگ میں اور یہ جو تانبے کی بنائی ہوئی گائے ہے جس میں روغن زیتون ہے خوب بھڑک رہی تھی، کہا کہ تمہیں اس میں ڈال دیا جائے گا. اور ان کے سامنے کئی لوگوں کو جب انہوں نے جو ہے وہ قبول نہ کیا عیسائیت کو ان کے سامنے پھینکا گیا اور پھر وہ جلنے لگے. اچھا انہوں نے جو ہے صحابی رسول جو حضرت عبداللہ بن حذافہ تھے، ہا اور زال الف فا اور ہا، انہوں نے کہا خواہ کچھ بھی کرو میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. اب بڑے وہ لوگ جو تھے بادشاہ کے جو ساتھی تھے بڑے حیران تھے کہ اب وہ کیا کر رہے تھے کہ ان کے سامنے مسلمان قیدیوں کو لیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کے سامنے مسلمان قیدی کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے جائیں. کھولتے ہوئے تیل میں مسلمان قیدیوں کو لیا گیا اور ڈال دیا گیا، اور وہ جل بھن کر کباب بن گئے، اور وہ صاحب رسول اپنے مظلوم ساتھی کا انجام دیکھ کر رونے لگے. اب آپ سوچیں تو صحیح کے رونے لگے۔ رومیوں نے کہا، موت سے ڈر کر روتے کیوں ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اس آیت قبول کر لو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ ثانی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں موت سے ڈر کر نہیں روتا، بلکہ اس بات پر روتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک جان ہے، کاش کہ ایک جان کی بجائے میرے ہر بال کی جگہ ایک ایک جان ہوتی اور میں ان سب جانوں کو راہ حق میں نثار کر دیتا۔ رومی ان کی قوت ایمان دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور ایسے پختہ ایمان والے شخص کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے اور بےتاب ہو گئے۔ رومیوں نے کہا، اگر تم ہمارے بادشاہ کی پیشانی پر بوسہ دے دو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ پہلے تو کہا کہ دین عیسائیت قبول کر لو، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں۔ پھر کہنے لگے کہ اچھا تم ہمارے پھر بادشاہ کو چوم دو، بادشاہ کی جو پیشانی ہے اس پہ بوسہ کر دو۔ انہوں نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا پھر مال و دولت تمہیں بہت زیادہ دیں گے، انہوں نے انکار کیا۔ پھر کہا کہ اچھا حسین عورتیں، بہت خوبصورت عورتیں، عیسائیوں میں بہت حسن ہے، اس کا لالچ دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ آخر جو ہے کیسرے روم نے کہا، کیسے روم اب کہنے لگا، میری پیشانی چوم لو تو تمام مسلمان قیدی چھوڑ دیے جائیں گے۔ اب اپنی بات نہیں ہے صرف کہ تمہیں چھوڑا جائے گا، سارے مسلمان قیدی چھوڑ دیے جائیں گے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر وہ صاحب رسول اب فوراً اٹھے اور بادشاہ کی پیشانی کو چوم لیا۔ 80 مسلمانوں کی قیمتی جانیں محفوظ ہو گئی۔ اب جب یہ مدینہ آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ سنایا، انہوں نے خوشی سے ان کی پیشانی چوم لی اور دوسرے مسلمانوں سے کہا کہ وہ سارے ان کے سر کو بوسا دیں، سارے ان کی پیشانی کو چومیں۔ تو مسلمان اپنی ذات کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے جیتا ہے، اور ورنہ پھر مسلمان کیا کرتا ہے کہ جان تو دے دیتا ہے، سر کی بازی لگا دیتا ہے، سر کٹوا دیتا ہے، لیکن دین اسلام کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو ان آیات میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم کیا کرنا، کہ مکہ کی وادی جو تھی وہ آگ کی بھٹی بن چکی تھی۔ کبھی بلال حبشی مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹائے جاتے اور ان کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑا جاتا اور جو ہے ان کو دہکتے کوئلوں پر لٹایا جاتا، اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ وہ کہا جاتا تھا کہ محمد کا انکار کرو، اللہ کا انکار کرو، اور وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور چشمے فلک نے یہ نظارے دیکھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جسم سے چربی پگھل کر ان دہکتے کوئلوں کو بجاتی تھی۔ اور حضرت جو ہے وہ خباب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے اپنی کمر جو سے اسے پردہ کپڑا ہٹایا، قمیض ہٹائی اور دکھایا، اور وہاں پہ بڑے بڑے سفید رنگ کے نشان تھے جیسے برف کے نشان ہوتے ہیں، اور وہ ایک نہیں تھے، بہت سے غریب مظلوم مسلمان، تو بہت سے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا، اور یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود، اور وہ جو کچھ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ تو اس سے اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ آج کے دور کا مسلمان بھی آزمایا جائے گا۔ یہ زینب الغزالی جو ہے یہ مصر کے اخوان المسلمون سے تعلق رکھنے والی جو ہیں یہ مجاہدہ، ان سے ملنے کا ہمیں بھی شرف حاصل ہوا، اور ماشاءاللہ بڑی مطلب ان کو دیکھنا ہی لگتا تھا کہ بڑی بات ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں ہم نے ایک کانفرنس کی تھی لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے، تو زینب الغزالی بھی وہاں سے آئی تھی مصر سے، اور پھر ہماری ان کے ساتھ ایک انٹرویو ہوا، گفتگو بھی ہوئی۔ تو کہتی ہیں کہ جو ہے ان کو بھی جیل میں رکھا گیا تھا، کتے ان پر چھوڑے جاتے تھے، کتے، اور وہاں پہ ٹھنڈے پانی کا جو عذاب تھا، بہت سی سزائیں ان کو جیل میں دی گئیں، اور ایک ہی بات تھی کہ تم یہ دین کا جو اور اپنے مسلمان دے رہے تھے۔ ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں نا جو نام کے مسلمان ہیں جو بک جاتے ہیں، ہماری بادشاہتیں جب بک جاتی ہیں تو پھر ثواب کا سانحہ بھی پیش آتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ اپنی ہی مسجدیں جلائی جاتی ہیں، اپنی مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں نا۔ تو بہرحال تو اب یہاں پہ بھی وہی بات ہے، اور آج کے دور کے مسلمانوں کو بھی کیا کرنا چاہیے کہ ایمان کی بازی نہیں لگانی چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے۔ کسی کی جاب کا خطرہ ہے اور کسی کو کہا جاتا ہے کہ داڑھی کٹوا دو، کسی کو کہا جاتا ہے یہ نام हटा दो मुसलमानों वाला, किसी को कहा जाता है हलाल हराम की तमीज छोड़ दो वरना जॉब से निकाल देंगे। तो याद रखें कि ये जहां भी ईमान है वहां भी आजमाइश है, ईमान और आजमाइश लाजिम और मलजूम है। तो मक्की दौर के मुसलमानों से कहा जा रहा है कि अहले मक्का ने जो मुख्तलिफ तरह की आजमाइश की भट्टी गर्म कर रखी है, तुम ईमान का सौदा न करना, तुमसे पहले भी ईमान लाने वाले जो थे वो आजमाइशों में डाले गए लेकिन उन्होंने ईमान का सौदा ना किया। मुख्तलिफ दौर के जो थे मुसलमान जो अपने अंबिया पर ईमान लाए थे, और फिर उसके साथ ही क्या बताया जा रहा है, वमा नकमु मिनहुम इल्ला अय्युमिनु बिललाहिल अजीजिल हमीद। तो इनको जो है क्यों आग में डाला गया, फरमाया वमा नकमु और नहीं बदला लिया उन्होंने, मिनहुम इनसे, और नहीं इंतकाम लिया, नकमु नहीं इंतकाम लिया इनसे अहले ईमान से। किन्होंने इंतकाम लिया, काफिरों ने, हर दौर के काफिरों ने, उन्होंने अहले ईमान से इसलिए इंतकाम लिया, इल्ला ये के मगर अय्युमिनु के वो ईमान ले आए, बिल्लाहिल अजीजिल हमीद उस अल्लाह पर जो गालिब है और हमीद है। अब आप देखिए कि यहां पर जो है नकामू का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है और इसके मानी है इंतकाम लेना और बदला लेना, इसके मानी है किसी चीज को बुरा समझना और उसमें ऐब धरना। और जब जो है जैसे इसी से लफ्ज इंतकाम है कि जब किसी का नापसंदीदा काम किसी को बहुत बुरा लगे और वो उस पर गुस्से पर गजबनाक होकर उसको जो सजा दे या बदला दे तो उसके लिए इंतकाम का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि किसी को इसके बुरे अमाल पर गजबनाक होकर सजा देना, बदला देना या नेमत उससे छीन लेना। तो उन्होंने क्या किया था कि उनको जो है वो सजा दी थी और सजा देने वाले जो थे वो काफिर थे और जिनको सजा दी गई उनका जुर्म क्या था, इसको हाईलाइट करें, अय्युमिनु के वो ईमान लाए थे और किस पर लाए थे, बिल्लाही अल्लाह पर, अल अजीज, और वो अल्लाह कौन है आपको पता ही है कि वो इज्जत वाला भी है। इसके अलावा अल अजीज के मानी क्या है, इसके एक मानी जो है वो जबरदस्त के भी हैं, गालिब के भी हैं, कि वो लोग गालिब अल्लाह पर ईमान लाए थे। और साथ ही हमीद, हमीद के मानी ये हैं कि वो अल्लाह जो कि सिर्फ, पीछे आपने पढ़ा अजीज के इज्जत कुदरत शान और अजमत वाला ही नहीं बल्कि हमीद भी है, रहमत रबूबियत और जो भी उसकी सिफात है उसका इजहार होता है। इससे ये बात पता चलती है कि अहले ईमान ने ऐसे अल्लाह पर वो ईमान लाए थे जो जबरदस्त भी है, अपनी जात में आप महमूद है, कोई उसकी तारीफ करे या ना करे उसकी मुसलसल तारीफ हो रही है, होती रहेगी, वो अपनी जात में आप महमूद है। तो इन ईमान लाने वालों ने उस अल्लाह का सहारा लिया था और जो भी इस अल्लाह का सहारा लेगा तो वो कामयाब हो जाएगा, उसको फौज मिलेगी, फौजुल मुबीन फौजुल अजीम। वो फिर फरमाया अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ध, और वो अल्लाह है, लहू उसी के लिए है, अल मुल्क बादशाहत, बताया जा रहा है कि आसमानों और जमीन की बादशाहत उसके लिए है, मुल्कु समावाति वल अर्ध, एक जगह की नहीं सारे आसमानों की सारी जमीनों की, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, और अल्लाह है हर चीज पर गवाह। अल्लाह देख रहा है कि ईमान लाने वाले कैसा ईमान लाए और कैसे सताए जा रहे हैं, कैसे जालिम दुख दे रहे हैं, उनको आग में डाल रहे हैं, और ये अल्लाह जो है इसने क्या किया कि इसने देखा कि अहले ईमान जलाए जा रहे हैं लेकिन अल्लाह ने उस वक्त कुछ ना कहा, क्योंकि दुनिया तो हिसाब किताब की जगह नहीं है, तो आखिर ये जुल्म सितम अल्लाह कब तक गवारा करेगा। फिर वही अल्लाह है जो कि फिर इन जालिमों को ढील नहीं देगा, इनको पकड़ लेगा, और फिर जो है वो क्या होगा कि कयामत आएगी, वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद, फिर क्या होंगे, फैसले होंगे। फिर फरमाया الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق, बेशक जिन लोगों ने तकलीफें दी فتنو فتنے سے ہے، فتنہ، اور فتنے کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے، آزمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ آزمائش کی بھٹی جو ہے وہ کتنی سخت ہوتی ہے، کتنی سخت ہوتی ہے کہ جس میں بھٹی کو جب گرم کیا جاتا ہے تو گرم کرتے ہوئے پھر کیا کیا جاتا ہے کہ گرم بھٹی کے اندر اگر سونے کو بھی ڈال دیا جائے تو اس کا کھوٹ جو ہے اسے الگ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ لفظ جو ہے یہ آزمائش کے لیے آیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان الذین فتنوا، کہ بے شک وہ لوگ جنہیں دین سے گمراہ کیا گیا، جن کو آزمائش میں ڈالا گیا، جنہیں سخت سزا دی گئی، اور وہ کون تھے؟ المؤمنین، ایک مومن نہیں تھا، مومنین بہت سے مومن تھے، والمومناتی، اور صرف مرد ہی نہیں تھے، عورتیں بھی جو ہیں وہ پیچھے نہیں رہی جی اور جان کی بازی لگانے میں. مومنات ان کی جمع ہے مومنات، عورتیں بھی تھیں کہ جب ان کو آزمائش میں ڈالا گیا. اور آپ یاد رکھیے گا کہ فتن جو ہے تیسرا درجہ ہے، پہلا ہے امتحانا، دوسرا ہے بلا ابتلا، تیسرا ہے فتن. اور فتن جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ آزمائش میں سختی پائی جاتی ہے، سونے چاندی کو جب جو ہے وہ بھٹی میں ڈال دیا جائے تو تپانا، گلانا، کھوٹ معلوم کرنا. تو فتن کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے، اور بالعموم ایسی چیزوں سے ہوتی ہے جس کا انسان سے دلی تعلق ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے آزمائش ہے. انما المال والاولاد فتنہ، اور آپ پڑھ چکی وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ. وہ عورت نے بھی اپنے بچے کی طرف دیکھا تھا نا، اور پھر وہ رک گئی، بچہ بول پڑا اللہ کے حکم سے، اور اس نے کہا کہ نہیں ماں کود جا، یہ حق ہے. تو بہرحال یہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو تھے ان کو تکلیفیں دی گئیں، آزمائش میں ڈالا گیا، شدید آزمائش میں. ثم لم یتوبوا، پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ یہ تائب نہ ہوئے، دین اسلام کو نہ چھوڑا، ایک اللہ پر ایمان نہ چھوڑا. اصل میں آپ کو پتا یہ توب، لوٹ آنا، تو وہ ایمان سے لوٹے نہیں، اور انہوں نے اس زمانے کا وہ جو بادشاہ کا دین تھا یا جو کچھ بادشاہ چاہتے تھے اس کو قبول نہ کیا. کہ ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہ کی. تو ایک طرف اس کے معنی کیا ہیں کہ اہل ایمان نے جو تھا اس دین کو نہ چھوڑا، اور وہ جو تھے وہ آزمائش کی بھٹی میں چلے گئے، اور انہوں نے وہ جو کافروں کا راستہ تھا اس کو قبول نہ کیا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ان اللہ زینہ سے مراد کون لوگ ہیں، یہاں اس سے مراد جو ہیں وہ کافر ہیں، کافر جنہوں نے گڑے کھودے جن میں آگ بھری بھی تھی، تو وہ لوگ مراد ہیں کہ ان اللہ فتنوا. تو اصل اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اہل ایمان کو آگ سے بڑے ہوئے جو ہے وہ گڑوں میں ڈالا، اور جو ہے ثم لم یتوبوا، پھر اپنے اس رویے سے تائب نہ ہوئے، ذرا سا احساس نہ ہوا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اہل ایمان کو جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا تھا، اب ان کو بھی یہ سزا دی جائے گی. جہنم خود بھی دہک رہی ہے، آگ اس کی گھور رہی ہے، آگ اس کی ایسے ہے، اور جہنم اپنی سزاؤں کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ زفیر بھی ہے، شہیق بھی ہے، تغیظ من الغیظ، بھڑک رہی ہے. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کے لیے بھی عام عذاب تو ہے ہی، کیونکہ جہنم سے مراد سارا جہنم کا دوسرا عذاب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عذاب بھی دیا جائے گا، وہ ہے جلائے جانے کا عذاب. پھر اہل ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان کے لیے جنتیں ہیں، جنات، باغات ہیں، یقیناً ایمان اور عمل صالح کا جو ہے ان کو پھل اور بدلہ ملنے والا ہے. اور کیا ہے؟ جنتیں، انعامات، ساری نعمتیں اور ساری اچھی چیزیں जो है उनका मजमू बताया जा रहा है, तजरी मिन तहतिहल अनहार, बहती हैं जिनके नीचे नहरें, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, नहर की जमा अनहार। और आप बहुत सी नहरों का जिक्र अब तक पढ़ चुकी, सलसबील भी है, और उसके बाद जो है इसमें और क्या है, इसके अंदर तस्नीम भी है, और दूध की नहरें भी हैं, और शहद की नहरें भी हैं असल मुसफ़ा की, और जो है तरह तरह की नहरें वहां पे बहती हैं। ज़ालिकल फौज़ुल कबीर, ये है बड़ी कामयाबी। मुफ्लहून का भी अगला दर्जा है अल्फौज, और फौज भी कैसी है, अल कबीर, जैसे रिजल्ट जो निकलने वाला है ऐसी कामयाबी कि जिसे देखकर इंसान जो है निहाल हो जाए, खुश हो जाए, तो ये बड़ी कामयाबी है। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत एक और मंजर जो है वो पेश करते हैं, और ये मंजर बड़ा ही शदीद है और बड़ा ही सख्त है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आयत नंबर जो है वो 12 से लेकर 16 तक क्या बताया जा रहा है, कहा इन बतश रब्बिका ला शदीद, अल्लाह की पकड़ से डराया जा रहा है। एक तो थी ना उन जालिमों की पकड़ के आग में भरे हुए गड़ों में अहले ईमान को डाला, कहा इन बतश रब्बिका ला शदीद। आप कभी कारियों की तिलावत सुने, जब यहां पर आते हैं तो उरूज पर जाते हैं, बुलंदी पर जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मजमून के लिहाज से तिलावत करने वाले को उसके अंदर जो है वो उतार चढ़ाव करना चाहिए। इन्नबत शरबिकल शदीद इन्नहु हुवा युबदी व युईद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। और आप देखिए कि पकड़ के लिए भी कुरान में मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, और बदशा ये कौन सी पकड़ है, बदशा ऐसी पकड़ को कहते हैं किसी चीज को गलबे और कुवत से पकड़ना, कोई चीज जबरदस्ती से पकड़ना, ले लेना, सख्त मजबूत गिरफ्त, जाबिराना गिरफ्त, रोब से पकड़ना। अब यहाँ पे जो है कब्जा हो सकता था, अखजा हो सकता था, खतफा हो सकता था, ये चीजें नहीं आई, बहुत अच्छा। बाज लोग कहते हैं कि अरबों के यहाँ एक मुहावरा है कि ऐसी पकड़ जो 40 साल का शख्स पकड़ता है उसके लिए जो है ना ये आता है बदशाह का लफ्ज, क्योंकि 40 साल वाले की जो पकड़ होती है बड़ी सख्त होती है, मजबूत जवानी कुवत उरूज पर होती है, तो उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे कहा कि तेरे रब की पकड़, वही, अब देखिए रब का लफ्ज वही रब है जो जमीन से जो है वो सोना जो है वो निकालता है फसलें, वही रब है जो आसमान से पानी की धारे मिदरारा सज्जाजा खूब मूसलाधार बारिश होती है, जिसने पूरी कायनात इंसान के लिए सजाई, अल्लाह की रबूबियत की निशानियां है ना, अब वही रब है जो तुम्हें पकड़ेगा, तो उसकी पकड़ बड़ी शदीद है, लशदीद। और ये शिद्दत जो है याद रखें ये कुव्वत के मानी में आता है, मजबूती सख्ती, तो तेरे रब की पकड़ बड़ी शदीद है। कोई जमीयत, कोई जमात, कोई ग्रोह, कोई काफिर किसी दौर का इस गलत फहमी में ना रहे कि वो अल्लाह से बच सकता है या उनका कोई पीर या ग्रो उनको बचा सकता है। इन्ना बतश रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युबदी व युईद। अब यहाँ पे अल्लाह की कौन सी पकड़ कि बेशक वही जो है वो पहली बार पैदा करता है, इब्तदा करना पहली दफा पैदा करना, व युईद और फिर उसको लुटाना इआदा करना, तो तेरा रब पहली मर्तबा भी वही पैदा करता है, व युईद और वही दोबारा पैदा करेगा, तो वो जात जो कुव्वत वाली है, कुदरते कामिला वाली है, तो पहली मर्तबा जब उसने पैदा किया तो पहली बार चीज का बनाना तो मुश्किल होता है, तो जब पहली बार बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं है तो कयामत वाले दिन दोबारा पैदा करना उसके लिए कौन सा मुश्किल है, वो जरूर उठा खड़ा करेगा, लोगों को पैदा करेगा, तो क्यों पैदा करेगा, ताकि सजा दी जाए, ताकि हिसाब किताब हो, ईमान लाने वालों को उनके ईमान की जजा दी जाए और गुनाह करने वालों को उनके गुनाहों की सजा दी जाए। वहुवल अलगफूरुल वदूद, वो है बख्शने वाला। अब देखे अल्लाह की एक सिफत दूसरी सिफत से टकराती नहीं है। अब यहाँ पे गफूर का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया गया है, मानी क्या है कि ढांपने वाला है, वो गुनाहों को बख्शने वाला है, वो जो है وہ لوگ جو کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ اللہ کیسا ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ لوگوں کے گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے، پھر وہ ان کو بخش دیتا ہے، غفور اس کا نام ہے، پھر الودود اور وہ بہت محبت کرنے والا ہے، ود اس چیز کی محبت کو کہتے ہیں جس کو انسان بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے، تو کہا کہ جو ہے وہ بہت محبت کرنے والا ہے، ودود بہت چاہنے والا ہے، تو غفور اور ودود آئے ہیں اہل ایمان کے لیے جو اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور یہ بادشاہ اور اس کے علاوہ شدید اور اوپر العزیز الحمید اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کی پکڑ بھی بڑی ہی شدید ہے، ذو العرش المجید، عرش والا ہے، اقتدار والا، تو عرش کے معنی ہے پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی کرسی، اس کا اقتدار پوری کائنات پر محیط ہے، اور صرف ایسا ہی نہیں کہ حکومت والا ہے، بہت سی حکومتیں ایسی ہوتی ہیں نا اختیار کوئی نہیں ہوتا، جیسے شاہ ایران نے جو ہے وہ پناہ لی تھی، ملک کو چھوڑ دیا تھا، اسی طرح پاکستان کے بادشاہ بھی جو ہے جو بھی کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے یا منسٹر ہوتا ہے تو ایک ٹانگ کو زمین پر ہوتی ہے، دوسری جہاز پر، اور دوسری جو حکومتیں ہیں ان کا سہارا لیا ہوتا ہے کہ کب جانا ہے، کوئی سعودی چلا جاتا ہے، کوئی برطانیہ چلا جاتا ہے، اور پھر حکومت جو ہے وہ ارد گرد کی جو بڑی سپر طاقت ہے ان کی وجہ سے ان کی چلتی ہے، کیونکہ انہیں سے ساز باز رہتا ہے، تو اللہ کی جو حکومت ہے وہ ایسی حکومت نہیں ہے، وہ بڑی شان و شوکت والا ہے، المجید، شان و شوکت میں بڑا ہے، تو مجید جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ اظہار کر رہا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالی کی جو کرسی ہے اور حکومت ہے کیسی ہے، بڑی فضل و کرم والی ہے، بڑی شان و شوکت والی ہے، مجید ہے، اچھا اس کی کرسی اقتدار، کیونکہ عام طور پہ کرسی مراد نہیں ہے، پورا عرش اور بعض کہتے ہیں پوری کائنات پر جو اللہ کا اقتدار ہے یہ چیزیں مراد ہے نا، تو اس کا حال کیا ہے، فعال لما یرید، وہ کر گزرنے والا ہے جو کچھ وہ چاہے، اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو وہ غفور ہے کہ بخشنے پر آئے تو کیسے، کہ بڑے بڑے گناہوں کے ڈھیر اور گٹھڑیاں لے کر، پہاڑوں جتنے گناہ ہوں، بڑے بڑے گناہ ہوں، اور انسان ان کو لے کر اللہ کی طرف رجوع کر لے، معافی مانگ لے، باز آ جائے تو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ پا سکتا ہے، الغفور ہے، الودود محبت کرنے والا، اس کو کسی سے دشمنی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو خام خواہ سزا دے یا آگ میں ڈالے، بلکہ کیا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرے اس سے محبت کرتا ہے، سزا کیوں دیتا ہے، جب کوئی سرکشی سے باز نہ آئے، توبہ نہ کرے، اور پھر جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی سرکشی سے باز نہیں آئے گا تو ذو العرش المجید، بڑی مضبوط اقتدار اور حکومت والا ہے، پھر وہ گستاخوں کو سزا بھی دے گا، اور سزا دینے کا حال کیا ہوگا، فعال لما یرید، جو وہ چاہے کر گزرنے والا، فعال اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ اللہ جو ہے وہ چھوڑ دے، فعال اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی جو چاہے کر گزرنے والا ہے، اس کی سزا بڑی ہی سخت ہے، بڑی ہی شدید ہے، فعال ہے، فعل سے ہے نا، اور آپ دیکھیں کہ فعال کے اوپر جو ہے شد آئی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ شدت پائی جاتی ہے، تو جیسا چاہے پھر کسی کو پکڑے اور جیسا چاہے کسی کو سزا دے، پھر آیت نمبر 17 سے لے کر جو ہے وہ 22 تک کیا آیا، کہ پہلے 17 اور 18 میں پچھلی قوموں کے واقعات بتائے گئے ہیں، هل اتاك حدیث الجنود، کیا پہنچی ہے تیرے پاس جنود کی خبر، اور تا کی ضمیر رسول اللہ کے لیے آئی ہے، اور بتانا مقصود ہے تمام لوگوں کو، کافروں کو، اہل مکہ کو بھی، سب کو، کہ کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر پہنچی الجنود، جنود کی، اور جنود جو ہے اس سے مراد ہے جیسے جندی کہتے ہیں ایک سپاہی کو، اور جنود کے معنی ہے بہت سے سپاہی، بہت سے لشکر، تو مراد ہے بہت سی قومیں، और यहाँ पे खास तौर पर जिक्र किया गया है आगे फिरऊन नवा समूद, ये है लश्करों वाले। तो कौम समूद और कौम फिरौन को क्यों जिक्र किया गया? इसलिए कि अहले मक्का अपने आप को अजमत, शौकत, दौलत, इकतदार, हुकूमत, सरदारी के लिहाज से बड़ा ऊंचा समझते थे। तो यहाँ पे उनको डराया गया, कुरैश के लीडरों को, कि तुम्हारी अजमत और शौकत की धाक दुनिया पर बैठी हुई है, तो वो अल्लाह चाहे तो क्या कर सकता है कि जिस अल्लाह ने फिरौन को पकड़ा वह समूद और समूद को पकड़ा और इनके लश्करों को पकड़ा, वही अल्लाह है ए काफिरो जो तुम्हें भी पकड़ सकता है, मक्का के सरदारों तुम्हें भी पकड़ सकता है। तुम्हें बड़ा घुमंड है ना, तो फिरौन को भी अपनी सल्तनत, हुकूमत और लौ लश्कर पर बड़ा घुमंड था, और कौम समूद भी अपने आप को बड़ा ताकतवर समझती थी। अल्लज़ीन जाबु सख्र बिल वाद, घर बनाए थे पहाड़ों को तराश तराश कर, और पहाड़ों के अंदर नीचे ही नीचे शहरों के शहर उन्होंने आबाद कर रखे थे, और कहते थे कि कौन है जो कुवत में हमसे बढ़कर है, मन अशद्दु कुवतन, कौन जो है वो ज्यादा शदीद है, कुवतन कुवत में मिन्ना हमसे। तो यहाँ पे इसलिए उनका उनको मिसाल के तौर पर पेश किया गया। बलिल्लज़ीना कफरू फी तकदीब, ये जो झुटलाने वाले हैं क्या कर रहे हैं, अल्लज़ीना कफरू, इन्होंने कुफर किया है, इनकार किया है, फी तकजीब, झुटलाने ही में लगे गए लगे हुए हैं। इनका किरदार क्या है, तकजीब, मुस्तकिल जो है मुनकरीन अहले मक्का मुसलसल झुटला रहे हैं। फिर वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, और अल्लाह इनको घेरे हुए है, वरा जो है वो क्या क्या है इसके मानी, ज़वील अज़दाद में से ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से अल्लाह ने इनका अहाता किया है। मुहीत अहाते हौद से है, जैसे कले के इर्द गिर्द चार दीवारी नहीं होती, अहाता घर के बाहर आप बना लेते हैं कोई अंदर जा ना सके, तो अल्लाह जब इनको पकड़ेगा कभी आगे से कभी पीछे से कभी ऊपर से कभी नीचे से, अल्लाह इनका आगे पीछे हर तरफ से अहाता कर लेगा कि फिर ये भाग कर कहीं जा ना सकेंगे। जैसे फिरौन को जो है जब समंदर की लहरों में वो अंदर घुसा तो उसका अहाता कर लिया कि वो बच ना सका, वो भाग ना सका, उसका ईमान कबूल ना हुआ। और कौम समूद पर भी जब अजाब आया मुख्तलिफ तरह का, तो ऐसा अहाता था अल्लाह का कि वो भाग ना सके और बच ना सके। तो अल्लाह ने भी इनका जो है वो इनको घेरे में ले रखा है। हिम की जमीर है काफिरों के लिए, असल में अहले मक्का मुराद हैं, लेकिन हर दौर के काफिर, कि अहले मक्का किस खेत की मूली हैं, कि अल्लाह जब उनको पकड़ने पर आए तो क्या ये बच सकते हैं, नहीं, इनको बुरे अंजाम से दो चार होना है। अब आप देख लें गज़वा बदर में कैसा अल्लाह ने उनको घेरा, खुद मक्का से निकलकर जो है वो बदर के मैदान में आकर रुके, और बड़े बड़े सरदार जो थे वो ढेर हो गए, 25 के करीब सरदार उनके। आखिरी दो आयतें जो हैं ये कुरान और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर जो है वो गवाही देती हैं, क्योंकि आप कुरान को पेश कर रहे थे, अहले मक्का झुटला रहे थे, कहा बल हुआ कुरानुम मजीद, बल्कि कुरान है कैसा, मजीद, बुलंद पाया। पहले देखें कि अल्लाह की सिफत है जुल अर्शिल मजीद, अब ये कुरान की सिफत है, कुरान क्या है, कुरान बुलंद पाया है, बड़ी बुजुर्गी वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान और शौकत वाला है, ये मामूली किताब नहीं है। कुरान मजीद अजीम दौलत है, अजीम किताब है, और जो अल्लाह की सिफत है वही जो है वो कुरान की सिफत है। तो जो अल्लाह को मानते हैं तो कुरान को क्यों नहीं मानते, उनको कुरान को मानना चाहिए। और कुरान मजीद जो है इस सिलसिले में आप देखिए कि कुरान का लफ्ज जो है ये मस्दर है, ये अल्लाह की उस खास किताब का नाम है जो रसूल अल्लाह पर नाजिल हुई। क्यों इसको जो है कुरान कहा जाता है, करुन से इसके मानी जमा करना भी है, जैसे तरिया होती है ना, तरिया में क्या होता है कि बहुत से लोग जमा हो जाते हैं, क्योंकि तरिया जो है जब पानी किसी जगह जमा होता है हौज वगैरह के लिए भी कहते हैं, तो लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, तो करिया बस्ती कूचे को भी उस जगह को भी कहते हैं करिया। तो इसी तरह जो है वो करुण के मानी जमा करना है कि इसमें तमाम पिछली किताबों के मजामीन जमा हैं। ये मजमुआ है तमाम उलूम का। कुरान का नाम पहले सूरत मुजम्मिल में भी आपने पढ़ा और अब जो है यहाँ पे भी आप पढ़ रही हैं, मुख्तलिफ जगह पे आपने पढ़ा। बहरहाल ये इंसान जो है जिंदगी कैसे गुजारे, कुरान उसका दस्तूर है और इसके मजामीन एक दूसरे से मरबूत है, जमा है, इनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। कुरान का रंग खिताबी भी है, जलाली भी है, बुरहानी भी है, जदली भी है, जैसे जिदाल होता है ना, जदली भी है, आईनी भी है, वाइजाना भी है, तस्कीर भी है, मुख्तलिफ इसके अंदाज है, मिले जुले हैं, मुख्तलिफ इसके मजामीन हैं, इसमें अकायद हैं, इसमें दीनी फराइज तरबियत के सुतून हैं, जैसे जो निजाम इबादत है, फिर नंबर 3 तहजीबुल इखलाक और तज़किया नफ्स के अहकाम हैं, नंबर 4 दुनिया और आखरत के लिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत से वादे रखे हुए हैं, फिर नंबर 5 दावत इल्लाह के उसूल हैं। और आप देखें कि 29वां पारा जो आपने पढ़ा उसका खास तौर पे मौजू जो है वो क्या है, दाई, दावा, जिन्हों का दावा आपने पढ़ा, नूह अलैहिस्सलाम का दावा आपने पढ़ा, सूरत मुजम्मिल मुदस्सिर रसूल अल्लाह को बताया जा रहा है कि आपने कैसा दाई पढ़ना है, बनना है, कैसा आपका किरदार होना चाहिए, है ना। तो पूरी सूरत जो है वो क्या कर रही है, उसमें दायाना किरदार, रंग, दावत बड़ी नुमाया है, इसी तरह और मुख्तलिफ कुरान की सूरतों में भी। फिर इसी तरह इसके अंदर पिछली उम्मतों के वाकयात हैं, कौमों के वाकयात हैं इबरत के लिए, और इसके अंदर जो है वो आयन के तौर पर कुरान को पेश किया गया है। बल हुआ कुरान मजीद, जो कुरान मजीद है बुजुर्ग बुलंद पाया बाअजमत किताब है, फी लौहिम महफूज, लौह के अंदर ये महफूज है, कुरान का लिखा अमिट है, अटल है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता, अल्लाह के पास है ये। दूसरी बात क्या है कि जो कुछ इसमें लिख दिया गया वो पूरा होकर रहना है, तमाम दुनिया के लोग भी मिलकर चाहें भी तो उसे रद्द नहीं कर सकते। फिर तीसरी बात क्या है कि कुरान मजीद के अंदर शैतान और मुख्तलिफ जो शयातीन हैं वो वसवसा नहीं डाल सकते, दरअंदाजी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा है, इसकी हिफाजत का खुद जिम्मा लिया, रहती दुनिया तक कुरान में तब्दीली नहीं हो सकती। ये है सूरत अल बुरूज जो हमें ये जहन नशीन करवाती है, नंबर 1 के असाबुल उखदूत, हाँ वो मुख्तलिफ दौर के जालिम लोगों या अहले मक्का, वो जो है वो कुतीला, वो जो है वो मारे गए दुनिया में भी और आखरत में भी। पहली बात तो ये है कि असाबुल उखदूत का अंजाम बड़ा ही शदीद और बुरा है। दूसरी बात कि अहले ईमान ने अगर आजमाइशों को बर्दाश्त किया, आग के गढ़ों में गिरकर जान देना कबूल कर लिया और ईमान को ना छोड़ा, तो इससे क्या बात पता चलती है, हर दौर के अहले ईमान को सख्त से सख्त मुसीबत बर्दाश्त करनी चाहिए मगर ईमान की राह से एक इंच भी नहीं हटना चाहिए, जर्रा बराबर भी उसके कदमों में लग्जिश नहीं आनी चाहिए। ये नहीं कि सकाफ उतारे जा रहे हैं, जिलबाब उतारे जा रहे हैं, दाढ़ियां कटवाई जा रही हैं, नाम इब्राहिम से इब्राहिम बन गया और मोहम्मद जो है वो मुंह कहलाया जाने लगा और मुख्तलिफ नाम जो है लोग तब्दील कर लेते हैं, या फिर ये कि ईमान को ही जो छोड़ देते हैं। तीसरी बात जो बताई जा रही है कि अल्लाह के मानने वाले जो हैं वो काफिर कहलाते हैं और जो ईमान लाने वाले हैं उनको अल्लाह ताला ने ईमान मोमिन जो है उसका टाइटल दिया है, और जो है अल्लाह ताला बड़ा ही इक्तदार वाला है, वो दुनिया में भी अपनी करिश्मे दिखाता है और आखरत में भी दिखाएगा। फिरौन और समूद की मिसाल से ये बात पता चलती है कि इबरत हासिल करनी चाहिए कि हर दौर का एक फिरौन होता है, जैसे आज के दौर का भी फिरौन है, लेकिन हर फिरौन के लिए एक मूसा हुआ करता है, तो डरने की बात नहीं है, परेशान की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। तो पैगाम ये दिया गया कि कुरान से ताल्लुक मजबूत करो, कुरान महफूज किताब है, इसके फैसले अटल हैं, और कुरान मजीद से ताल्लुक कायम करते हुए जो है वो अपनी जिंदगियों के धारों को बदलो और एक अच्छे मुसलमान बनो। और कुरान पेश किसने किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उस वाय रसूल को भी भूलना नहीं चाहिए। ये थी सूरत अल बुरूज, और ये मैंने जो है वो 8-10 साल पहले जब अमेरिका में पढ़ाई थी तो वहां पे यूथ को 30वां पारा लफ्जी तर्जमा रूट वर्ड तजवीज से पढ़ाया और हिफ्स भी करवाया था। यूथ के लोग आते थे, सूरत बुरूज उनको बड़ी पसंद आई थी। और उसमें अभी एक न्यू शादीशुदा जोड़ा जो है वो भी आया हुआ था इसमें इल्म वीक में। उसमें एक बच्ची आई हुई थी और कह रही थी, मैं उसको देख रही थी उस बच्ची को, तो उसके शौहर भी थे और शौहर वो बच्ची खुद पाकिस्तानी है, बच्चा जो है वो किसी और कंट्री का जैसे रहने वाला है और उर्दू नहीं उसको आती। तो वो बच्ची उस बता रही थी, चाह रही थी कि अपने शौहर को भी हम लोगों से मिलवाए, तो कह रही थी कि मैंने 30वां पारा टीचर से पढ़ा था और बहुत सी और उसने भी चीजें सीखी उस जमाने में। तो कह रही थी कि बुरूज सूरत मुझे आज भी कभी नहीं भूली, और मेरी पहली कुरान की ये टीचर हैं कि जिन्होंने मुझे कुरान की मोहब्बत दी और कुरान जो है उससे वो शऊर दिया कि मैंने वो सफर तय किया। फिर उसने वहां पे जब हमने कुरानी क्लासेस शुरू की तो फिर उसने ये कोर्स किया था, यूथ ने भी किया था, क्योंकि जैसे आप लोग अब पढ़ रहे हैं तो पढ़कर बैठना तो नहीं है। तो जो पहला ग्रुप हमारा ग्रेजुएट हुआ और ये जो है वो 2001 में हमारा पहला बैच, अभी 9/11 का वाकया नहीं हुआ था जब हमारा ये बैच वहां पे शुरू हो रहा था, फ्लायर बट गए थे, फिर उसके फौरन बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतने शदीद हालात में भी हमने सबने मिलकर जब वहां पे शुरू किया और इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक साइंसेस के नाम से वहां पे शुरू किया था। जब शुरू किया तो पहले बैच में हंड्रेड में लोगों ने दाखिला लिया, और लेकिन ये कि एंड तक कुछ लोग पहुंचते ना, 63 63 लोग ग्रेजुएट हुए थे। उसी में ऐसी यूथ का एक ग्रुप था जो उर्दू इंग्लिश दोनों पर अबूर रखता था, क्लास तो उर्दू में हुई थी, और फिर उन्होंने नेक्स्ट जो बैच था उर्दू का हमने सेपरेट शुरू कर दिया, मैं पढ़ा रही थी और फिर और भी साथ जो पहला बैच फारिग हुआ वो साथ शामिल हो गए। दूसरा जो इंग्लिश जानने वाले थे ना उन्होंने जो है उनके साथ वीकेंड पे शुरू कर दिया, और वीकेंड पे जो है उन्हीं ने जब शुरू किया तो 100 से ऊपर हाजिरी, और जो इस बच्ची ने फिर उसमें भी पढ़ा। लेकिन कहती हैं कि जो पहला ये जो 30वां पारा पढ़ा था ना जिस तरह तर्जमा तफसीर से और आपसे, और उसने मेरे अंदर ये जज्बा शौक पैदा किया कि अब वो फिर हर क्लासेस में जाती है कहीं भी होती है ना, और यूथ ने उसको संभाला और अब यूथ की हाजिरी औरतों से भी ज्यादा बढ़ गई है। तो हम तो अभी उर्दू में, यानी उर्दू ही की का चक्कर नहीं है कि बस उर्दू ही में लगे रहे, उर्दू में भी करना है जो उर्दू जाने वाले हैं, जो इंग्लिश जाने वाले हैं तो इंग्लिश में उन तक पहुंचना है, तो इंग्लिश वालों को सिखाएंगे वो आगे इंग्लिश वालों को सिखाएंगे। और मार नहीं खानी, पश्तों में भी मेरी अपने स्टूडेंट्स में पश्तो जाने वाले थे, वो पश्तों में करती है अपने पश्तों के लोगों को जमा करके। सिंधी जाने वाली भी एक तालिबे इल्म है और सिंधी में, तो अब यहाँ पे तो स्पेनिश लोगों को भी ढूंढना है, और किन को ढूंढना है आपने, चाइनीज को, फ्रेंच जानने वालों को, तो आपने दावा करना है एक एक जबान नहीं, मल्टी कल्चरल ये दुनिया है, और अल्लाह आपको यहाँ पे ले आया है तो किसी प्लानिंग से लाया है, क्योंकि ग्लोबल आपका जो टारगेट है, मेरा जो टारगेट है पूरी दुनिया है उम्मते वस्त, तो अब हमें क्या करना है, चौमुखी लड़ाई लड़नी है, अपने बच्चों को भी लैंग्वेजेस सिखाएं, दीन सिखाएं। लोग जो हैं मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए अरबी सीखते हैं, हम दावा करने के लिए दूसरी जबानें सीखें, सिर्फ दौलत नहीं दुनिया तो मिलेगी। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे जो है एक तो इंग्लिश जबान है और दूसरी जबान क्या है, फ्रेंच। अच्छा जो फ्रेंच बोलता है ना, जिसको इंग्लिश और फ्रेंच दोनों आते हैं, तो उसकी तनख्वाह डबल हो जाती है ना, बाय लैंग्वेज बायलैंगुअल। और इसी तरह अमेरिका में भी जिनको जो है स्पेनिश आती है उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। तो अब जो बहुत सी जबानें जानते होंगे और दावा करेंगे तो उनका अजर कितना बढ़ जाएगा। तनख्वाहों को क्यों सिर्फ गिनते रहें, दुनिया ही में क्यों रहें। माशाल्लाह मेरी इस क्लास में जो है वो एक तालिबे इल्म जो है वो कौन है, आपकी जबान इंग्लिश के अलावा क्या है, फ्रेंच, और फ्रेंच जो है इनको आती है और फ्रेंच इनसे सीखें। उसने उर्दू सीख ली दीन सीखने के लिए, 70-60% उसको उर्दू आती है, उसने इस क्लास को में शिरकत की है, तो हम दावा करने के लिए फ्रेंच क्यों ना सीखें, अपने बच्चों को फ्रेंच सिखाएं, और फिर ये कि हमें दावा करना है और ये उर्दू में इंग्लिश में जो बहुत सी किताब उर्दू सिखाएं। अफसोस की बात यह कि हमने अपने बच्चों को उर्दू भी नहीं सिखाई, उर्दू सिखाएं, पंजाबी सिखाएं, मुख्तलिफ जबानें सिखाएं, और जिस जबान के जो लोग हैं पंजाबी में 10 देते हुए घबराना नहीं चाहिए, उर्दू में देते हुए, इंग्लिश में देते हुए, फ्रेंच में देते हुए, बस लोगों को इकट्ठा करें, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो इंशाल्लाह नाजमा ने क्या करना है, जो फ्रेंच जानती हैं, इन्होंने जो है ये जो उर्दू और इंग्लिश की किताबें इनको ट्रांसलेट करना है, फ्रेंच में ट्रांसलेट करना है। आप में से जो पठान है उन्होंने पश्तो में ट्रांसलेट करना है, जो सिंधी जानने वाले हैं उन्होंने सिंध में, सिंधी लैंग्वेज में, और जो इंग्लिश जानने वाले हैं आपने खाली बस ये नहीं कि बैठ जाना है, अब तो जिन बनना है। और जिन क्या किया था, आयते सुनी, फजर की नमाज में शिरकत की और फौरन जाकर अपनी कौम को तबलीग देने लगे। कितनी खूबसूरत उन्होंने तबलीग की है। फिर नूह अलैहिस्सलाम का किरदार, फिर मुज़म्मिल मुद्दसिर का किरदार। तो ये है आखिरी पारे, कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ाते हुए, अब उठ खड़े हो, अब दावा करो, अब सीखो और सिखाओ, तड़पो और तड़पाओ, अब क्या करना है, खूब काम करना है। तो ये है सूरत अल बुरूज। और मैं सोच रही थी, मैं उस बच्ची से मिली और मैं सोच रही थी, बड़ी अच्छी बच्ची है और हो सकता है वो मिलने भी अभी आए, तो कह रही थी, मैं सोच रही थी इतना उसके अंदर जज्बा और जोश है, मैंने नहीं सोचा था कि खाली इनको 30वां पारा इन्होंने मुझसे पढ़ा है और उसके इतने असरात होंगे। बाज़ औक़ात आप इतना नहीं सोचते जितने उसके असरात निकल आते हैं। माशाल्लाह उसने अपनी शादी पर पूरी सेपरेशन करवाई कि मर्द औरतों की इकट्ठी शादी नहीं हो सकती, बामल है। हत्ता कि जब उसकी बात तय हो गई तो उसका फोन आया, कहने लगी कि क्या जो है अब शादी की बातें तय करने के लिए, क्योंकि वो लड़का जो है वही सही से मुसलमान है, बाकी फैमिली के लोग नहीं है, तो क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ, मेरे घर वाले कर सकते हैं, मतलब मैं करूँ तो ये नाजायज तो नहीं है। तो आप देख लें कि उसको ये समझ है कि डेटिंग इस्लाम में हराम है। तो ये है कुरान जो जिंदगियों में इनकलाब पैदा करता है। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। ऐ मौजे बला कुछ उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, ऐ मौजे बला कुछ उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं, और कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में थी, वरना मैं भी जानता हूँ, वरना मैं भी जानती हूँ आफियत साहिल में थी। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।